नमस्कार भारत, तारीख 19 नवंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। अमेरिका वेस्ट बैंक की इसराइली बस्तियों को अब नहीं मानेगा अवैध।
We believe that what we've done today is we've recognized the reality on the ground. We've now declared...
फलस्तीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की। उन्नाव में किसानों और पुलिस के संघर्ष के बाद ट्रांस गंगा सिटी का इलाका छावनी बनना, किसान मुआवजा बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत।
एडीएम ने स्वयं लाठी चलाई है हमारे बुजुर्ग किसानों पर, लेडीजों को तो नहीं बस का है, उन्होंने दौड़ा दौड़ा लेडीजों को मारा है उन्होंने।
पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में शरण देने की अपील की। कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने घोषणा की है कि अमेरिका इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक को अब अवैध नहीं मानता है। वेस्ट बैंक में बसाई गई यहूदी बस्तियों को अमेरिकी विदेश मंत्रालय 4 दशकों से अवैध मानता आया था। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमरीका के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। वहीं फलस्तीनियों ने अमरीका की इस नई नीति की निंदा की है। साथ ही जॉर्डन ने कहा है कि अमरीका की इस घोषणा के कारण मध्य पूर्व की शांति प्रक्रिया को लेकर खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। हांगकांग के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी कैंपस में गतिरोध अभी भी बना हुआ है। कुछ प्रसिद्ध हस्तियों ने कैंपस में जाकर प्रदर्शनकारियों को उस जगह को छोड़ने के लिए कहा है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के एक पत्रकार ने बीबीसी को बताया कि कई युवा कार्यकर्ता चले गए हैं और पुलिस उन्हें सुरक्षित रास्ता देने के लिए राजी हुई है। कुछ प्रदर्शनकारी पहले भाग निकले थे। हालांकि अभी भी जो प्रदर्शनकारी कैंपस में हैं उनका कहना है कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी को पुलिस ने घेर रखा है। यूरोपीय संघ ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हांगकांग की शीर्ष नेता कैरी लैम पर शांति बहाल करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा,
Unrest and violence cannot be resolved by law enforcement efforts alone.
कानूनी एजेंसियों के जरिए ही अशांति और हिंसा पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। सरकार को चाहिए कि वो जनता की परेशानियों को सुने। खासतौर से हम मुख्य कार्यकारी कैरी लैम से अनुरोध करते हैं कि वो प्रदर्शनों से संबंधित घटनाओं की स्वतंत्र जांच के लिए एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत समीक्षा परिषद बनाए। अमरीकी सरकार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से लगातार कहती रही है कि वो स्वतंत्रता चाह रहे हांगकांग के लोगों से किए गए वादों का सम्मान करे। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ किए गए अपने परमाणु समझौते के तहत पानी जमा करने की सीमा को लांघ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि ईरान 130 टन पानी जमा करने की सीमा से आगे बढ़ गया है। परमाणु रिएक्टर का एक हिस्सा इराक में बन रहा है। ईरान ने इससे पहले 2016 में सीमा को लांघ दिया था। एजेंसी को इसकी चिंता है कि ईरान समझौते की सीमा से अलग जाकर अपने यूरेनियम को और अधिक समृद्ध बना रहा है। पिछले साल ईरान पर अमरीकी प्रतिबंधों के कारण उसने अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाई थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका के ओक्लाहोमा में एक वॉलमार्ट स्टोर में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने पुष्टि की है कि इस घटना में हमलावर की भी मौत हुई है। इस घटना की और जानकारी आना अभी बाकी है। घटनास्थल के पास मौजूद रहे एरन हेल्टन ने गोलीबारी की घटना के बारे में कुछ इस तरह से बताया।
मैंने 9 गोलियों की आवाज सुनी और उसके बाद मैं और मेरी लड़की पार्किंग में आ गए और हमने देखा कि जमीन पर 3 लाशें पड़ी थीं।
मैं हमलावर पर झपटना चाह रहा था, लेकिन तभी एक और शख्स उस पर झपट गया और उसकी बंदूक छीन ली। उस शख्स ने हमलावर के सिर पर बंदूक रखी और उसे रुकने को कहा। ये थे ओक्लाहोमा गोलीबारी की घटना के एक चश्मदीद के शब्द। लेबनान में प्रदर्शनों के आयोजनकर्ताओं ने मंगलवार को संसद सत्र में सांसदों को जाने से रोकने के लिए एक बैठक की है। संसद के स्पीकर नाबी बेरी ने अनुरोध किया है कि सत्र चलने दिया जाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो संसद जाने वाले रास्तों को बंद करेंगे। प्रदर्शनकारियों को डर है कि सांसद भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए विवादित माफी कानून पर बात करने वाले हैं। ब्राजील में अमेजन के वर्षावन की कटाई में पिछले 12 महीनों की तुलना में तकरीबन 30% की बढ़ोतरी हुई है। एक दशक में ये ब्राजील के अमेजन वन की सबसे अधिक कटाई है। ब्राजील की अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी के अनुसार पिछले साल अगस्त से लेकर इस साल जुलाई तक तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल को साफ कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत अभिनंदन। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी समाचारों में आपने मोहम्मद शाहिद से सुना, अमरीका ने अपनी 40 साल पुरानी नीति को पलटते हुए इसराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट यानी कि वेस्ट बैंक की बस्तियों को वैध घोषित कर दिया है। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यह फैसला जमीनी हकीकत को दर्शाता है। फलस्तीन ने अमरीका के इस कदम की निंदा की है और यूरोपीय संघ ने चेताया है कि यह शांति की संभावना को नुकसान पहुंचाएगा। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को अमरीका की नई नीति के बारे में घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिमी तट की इसराइली यहूदी बस्तियों को अब गैर कानूनी नहीं माना जाएगा।
The Trump administration is reversing the Obama administration's approach towards Israeli settlements. US public statements on settlement activities in the West Bank have been inconsistent over decades.
माइक पोम्पियो कह रहे थे कि ट्रंप प्रशासन अब ओबामा प्रशासन की वेस्ट बैंक में इसराइल द्वारा बनाई गई यहूदी बस्तियों के बारे में नीति को उलट रहा है। इस बारे में अमरीका के सार्वजनिक बयान दशकों तक समान नहीं रहे थे। वेस्ट बैंक में इसराइल द्वारा बनाई जाने वाली यहूदी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करती हैं। माइक पोम्पियो ने साथ ही यह भी साफ किया कि अमरीका के इस फैसले से वेस्ट बैंक के बारे में कोई कानूनी रुख नहीं अख्तियार किया जा रहा है। वेस्ट बैंक में बसाई गई यहूदी बस्तियों को इसराइल और फलस्तीनियों के बीच एक अहम मुद्दा माना जाता है और किसी भी शांति समझौते में इस पेचीदा मुद्दे को अहम अड़चनों में से एक माना जाता है। इसराइल में अमरीका के इस फैसले को सराहा जा रहा है, वहीं फलस्तीनियों ने इसकी घोर निंदा की है। यूरोपियन यूनियन ने भी इस अमरीकी फैसले की निंदा की है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। नेतन्याहू पहले भी ये कह चुके हैं कि वो वेस्ट बैंक में बसाई गई यहूदी बस्तियों को इसराइल में शामिल कर देंगे। अमरीका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर मुख्तदर खान कहते हैं कि अमरीका ने इस फैसले से एक बार फिर इसराइल फलस्तीन मुद्दे में इसराइल का पक्ष लिया है और नेतन्याहू को सरकार बनाने में मदद करने की भी कोशिश की है।
1967 में वेस्ट बैंक में जीरो सेटलर्स थे, अब तकरीबन 1 मिलियन के करीब सेटलर्स हो गए हैं। तो ये अगर सेटलमेंट्स को अगर लीगल कह दें और इसको एनेक्स कर लें तो कोई जमीन ही नहीं बचेगी फलस्तीन स्टेट के लिए। तो बेसिकली ये अमेरिका का सपोर्ट है नेतन्याहू को, क्योंकि नेतन्याहू जाके दूसरे जो मेंबर्स है, जो छोटी पार्टीज हैं, उनको कह सकें देखो मेरे वजह से ना सिर्फ अमेरिका से ज्यादा एड आती है, मेरे वजह से देखो इतनी बड़ी चीज हो गई, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बना हुआ है ये सेटलमेंट का। अब अमेरिका कहता है कि ये सेटलमेंट लीगल है, इलीगल नहीं है। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है क्योंकि ये ताल्लुकात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे सिवा और कोई नहीं मेंटेन कर सकता।
1967 में इसराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वेस्ट बैंक में इसराइल द्वारा यहूदी बस्तियों का बसाया जाना अवैध है, मगर इसराइल ऐसा नहीं मानता। इसराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में 100 से अधिक यहूदी बस्तियां बसाई हैं। इससे पहले अमरीका ने यरूशलेम में अपना अमरीकी दूतावास खोल दिया था और गोलान हाइट्स पर इसराइली संप्रभुता को भी मान्यता दी थी। सन 1978 में अमरीकी विदेश विभाग ने कानूनी रुख अख्तियार करते हुए वेस्ट बैंक में इसराइल द्वारा बनाई जाने वाली यहूदी बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना था। उसके बाद से सार्वजनिक तौर पर अमरीकी अधिकारी वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बनाए जाने की निंदा करते रहे थे और उनको इसराइल फलस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण हल निकालने में एक रुकावट मानते रहे थे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो जैसा कि आपने सुना, अमरीका ने अपनी 40 साल पुरानी नीति को पलटा, इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक की बस्तियों को वैध घोषित किया।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में किसानों और पुलिस के संघर्ष के बाद ट्रांस गंगा सिटी का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। किसान मुआवजा बढ़ाने और अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि 90% किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है और इसे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। इस बीच आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू हो गया है। सुनिए क्या कुछ वहां पर हुआ और क्या कुछ चल रहा है। उन्नाव से हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र की ये रिपोर्ट।
मुर्दाबाद प्रशासन,
मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
जिला प्रशासन, मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद।
उन्नाव के शंकरपुर गांव में बड़ी संख्या में जुटे किसान सरकार से अपनी जमीन का मुआवजा बढ़ाने और दूसरे किए गए वायदों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की किसानों से इस बात को लेकर नाराजगी है कि पिछले दो दिन किसानों और पुलिस के बीच जो संघर्ष हुए, किसान उसके लिए प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि प्रशासन दावा कर रहा है कि किसानों ने पथराव किया जिसमें कई पुलिस वाले और अधिकारी भी चोटिल हुए हैं। उन्नाव के जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे कहते हैं,
काम यूपीएसआईडीसी का बंद था, पर काम शुरू कराने के लिए यूपीएसआईडीसी तरफ से अनुरोध किया गया, हम लोगों ने फोर्स दिया। परसों के दिन प्रातः 10 बजे जब लोग काम शुरू करने आए तो यहाँ की कुछ भीड़ ने पथराव किया इनके ऊपर, उसको मना किया गया, बात करने की कोशिश की गई और पथराव में हमारे सब घायल हुए, तो वहाँ पर वाटर कैनन लगा करके और आंसू गैस गोले छोड़ करके इनको सबको वहाँ से डिस्पर्स किया गया। आप पूरे यहाँ आसपास जो 3-4 गांव हैं, इन गांव में किसी गांव में जाकर देख सकते हैं, ना तो किसी किसान को चोट है, ना कोई किसान घायल है, ना कोई किसान अस्पताल में है। कानपुर लखनऊ से लेकर के उन्नाव तक,
उन्नाव और कानपुर के बीच ट्रांस गंगा सिटी बनाने के लिए करीब 16 साल पहले 4 गांवों के 2000 से भी ज्यादा किसानों की करीब 1150 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहित की थी। शुरुआत में मुआवजा बेहद कम था, लेकिन अब ये 12.5 लाख रुपए प्रति बीघा हो गया है। यूपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक अनिल गर्ग बताते हैं,
ये 3 गांव हैं यहाँ पे उन्नाव में, शंकरपुर सराय, मन भावना और कन्हापुर। टोटल लैंड एरिया है 1144 एकड़। इस जमीन का एक्विजिशन शुरू हुआ 2003 में और जो रेट रखे गए वो रखे गए 1,51,000 पर बीघा। फिर 2014 में लगभग 7 लाख पर बीघा एक्स्ट्रा एक्स ग्रेशिया के रूप में सरकार ने कैबिनेट से इसको पास किया, तो टोटल जो मुआवजा हुआ वो 12.5 लाख पर बीघा के हिसाब से किसानों को वितरित किया गया।
लेकिन 2 साल में पूरी होने वाली ये परियोजना अब तक ठीक से शुरू भी नहीं हो सकी है। यहाँ जब भी काम शुरू होता है किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्नाव के जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे कहते हैं कि किसी भी किसान को न तो चोट लगी, न कोई घायल हुआ और न ही कोई अस्पताल में है, जबकि गांव के लोग अपने छोटे लंगों को दिखाते हुए प्रशासन के दावे को साफ तौर पर झुठला देते हैं।
कहा कि वहाँ डीएम साहब आ रहे हैं शनिवार की और हम भी गए और डीएम साहब आए और बाधा को नहीं किया। डीएम साहब ने कहा सड़क, एडीएम साहब ने खुद हमको लाठी पेटी मारी,
एडीएम ने स्वयं लाठी चलाई थी हमारे बुजुर्ग किसानों पर, लेडीजों को तो नहीं बसका है, उन्होंने दौड़ा दौड़ा लेडीजों को मारा है उन्होंने।
ये सब यूपीएसआईडीसी जिला प्रशासन की गुंडागर्दी है, ये योगी जी का बलपूर्वक कब्जा दिलाने का आदेश है, इसलिए यहाँ पे जिला प्रशासन कब्जा दिला रहा है।
ये मेरी जमीन है, अपनी जमीन का हक नहीं।
प्रशासन कह रहा है कि 90% किसानों को ये मुआवजा दिया जा चुका है और कुछ किसान भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों की शिकायत है कि उन्हें मुआवजे की पूरी राशि और निर्माण स्थल पर मिलने वाली 6% विकसित जमीन का वादा पूरा नहीं किया गया है और बिना उसके पूरा हुए ही परियोजना में काम शुरू कर दिया गया।
हमको देने के लिए ये शर्तें की गई कि तुम्हें 16% प्लाट मिलेगा, 33 साल तक 3,000 रुपए महीने पेंशन मिलेगी और प्रति परिवार को एक परिवार के जिस लायक होगा उसको नौकरी दी जाएगी।
जमीन तुम्हें कह दिया, आप लोगों को कुछ बनता नहीं।
अभी तो वहाँ ऑफिसर लोग बैठे तो कह रहे हैं कि सारे मुआवजे दिए जाए,
बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है।
हालांकि यूपीएसआईडीसी के एमडी कहते हैं कि किसानों को 6% जमीन जल्द ही दे दी जाएगी, लेकिन किसानों को शायद उनकी बात पर भरोसा नहीं है। इस परियोजना स्थल और आसपास के गांव में लगभग पूरा जिला प्रशासन मुस्तैद है और बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन किसानों को समझाने में लगा है, लेकिन किसानों ने समझने की सिर्फ एक शर्त रखी है कि उनकी मांगे मानी जाएं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी उन्नाव।
उन्नाव के ट्रांस गंगा सिटी में आंदोलनकारी की चाहते क्या हैं, क्या उनकी मांगे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है और आखिरकार इस मामले में पेच कहां फंसा हुआ है। समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट आपने सुनी। और अब पंजाब की बात। पंजाब में इस महीने एक दलित युवक की मारपीट के बाद मौत हो गई। उनका परिवार न्याय और मुआवजा पाने के लिए कई दिनों तक लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहा। परिवार का आरोप है कि इस दलित युवक को ऊंची जाति के लोगों ने दलित होने के चलते मारा। अब परिवार को विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने उन्हें 20 लाख रुपए का मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की पेशकश की है। इस पूरे प्रकरण पर सुनिए बीबीसी संवाददाता सरबजीत सिंह धारीवाल और बीबीसी की सहयोगी सुखचरण सिंह की रिपोर्ट कमलेश मठेनी की आवाज में।
पंजाब के संगरूर में इस महीने के शुरुआत में एक दलित युवक जगमेल सिंह के साथ मारपीट हुई थी। अस्पताल में भर्ती रहने के 4 दिन बाद 37 साल के जगमेल सिंह की मौत हो गई। उसके बाद से जगमेल सिंह का परिवार धरने पर बैठा था और न्याय की गुहार लगा रहा था। उनके परिवार का आरोप है कि ऊंची जाति के लोगों ने दलित होने के चलते जगमेल सिंह के साथ मारपिटाई की। उनकी पत्नी का कहना है कि उनके पति को बहुत प्रताड़ित किया गया और परिवार को अब भी उन लोगों से डर है।
पेडर वाले छड़ाउन भी गए जी, उन्होंने कहा है तुसी बाहर निकलो, असी ते इहदे नाल आपे निपड़ांगे जे पानी मारने पानी दे।
गांव वाले बचाने भी गए, उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलो, हम इससे खुद ही निपटेंगे। पानी मांगने पर उन्हें पेशाब पिलाया गया। हम डरे हुए हैं, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मेरे पति ने किसी को कुछ नहीं कहा था, वो तो शरीफ इंसान थे।
जो तो मेरे बंदे नु किसी ने कुछ कहा नहीं करया नहीं, वो तो भला मान सतीगा।
वहीं जगमेल सिंह के भाई गुरतेज सिंह ने बताया कि उन लोगों ने पहले उनके भाई को बांधा और उसके बाद पीटा। उनका भाई मानसिक परेशानी से गुजर रहा था।
उन्होंने उसे बांधकर पीटा। वो लोग एक दूसरे को जानते थे, वो उसे दवाई दिलाने के बहाने ले गए थे। वो दिमागी रूप से परेशान था, वो उसे अपने घर ले गए और 2-3 घंटे तक पीटा।
2-3 घंटे कुटे।
गांव चंगाली वाला के जगमेल सिंह के साथ मारपीट की ये घटना 7 नवंबर की है। FIR के अनुसार मृतक का अभियुक्तों के साथ पहले किसी बात पर झगड़ा हुआ था। घटना वाले दिन मृतक गांव में ही किसी के घर पर बैठे थे, जहां बहाने से अभियुक्त उनको ले गए और बंधक बनाकर मारपीट की। हालांकि परिवार वालों के विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के ये मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। परिवार ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। लेकिन कृषि मजदूर यूनियन के सूबा सचिव लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि पंजाब में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनके पीछे जातिगत भेदभाव जिम्मेदार है।
पहले भी पंजाब में कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है, कभी मुक्सर में घटना होती है, कभी झब्बर में घटना होती है। इन घटनाओं का एक कारण जाति है और एक कारण ये है कि खेतीहर मजदूरों के पास जमीनें नहीं है, वो इन लोगों पर निर्भर है।
जगमेल सिंह के गांव से कई ऊंची जाति के लोग भी उन्हें समर्थन देने पहुंचे। उनका कहना था कि गांव में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है और वो पूरी तरह से जगमेल सिंह के साथ हैं।
पिंड कई बार खबरें ला रहे हैं कि दलितों का मुद्दा बना रहे हैं कि दलितों का है।
हम इन लोगों के समर्थन में इसलिए आए हैं क्योंकि मीडिया में इस मामले को दलित का मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि गांव में कोई भी किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करता है। गाँव के जट, ब्राह्मण, सरदार, सारे जनरल कैटेगरी के लोग इस परिवार के साथ हैं। ये हमला सिर्फ जगमेल सिंह पर नहीं हुआ है, बल्कि पूरे गांव पर हुआ है।
थाना लहरा में बीती 13 नवंबर को दर्ज की गई FIR के अनुसार मृतक के बयानों पर गांव के 4 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
कमलेश मठेनी से आप सुन रहे थे BBC संवाददाता सरबजीत सिंह धारीवाल और सुखचरण सिंह की रिपोर्ट। तो आपने सुना कि पंजाब में एक ऊंची जाति के लोगों ने दलित होने के चलते दावा है परिवार का कि इस दलित युवक की मारपीट के बाद मौत हो गई। उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर में कल हुए हिमस्खलन में 4 जवानों और 2 आम नागरिकों की मौत हुई है। आम लोग बोझा ढोने का काम करते थे। भारतीय सेना का कहना है कि दिन में सियाचिन ग्लेशियर के उत्तरी सेक्टर में 19,000 फुट की ऊंचाई पर 8 लोग गश्ती दल में शामिल थे और ये हिमस्खलन करीब दोपहर 3 बजे हुआ। सेना ने अपने बयान में कहा कि इस घटना के तुरंत बाद ही हिमस्खलन बचाव टीम को घटनास्थल पर भेजा गया, जिसने सभी 8 लोगों को बर्फ से निकाला। इन सभी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेना अस्पताल लाया गया, में से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। काफी कोशिशों के बावजूद 4 जवानों और 2 आम लोग जो कि कुली का काम करते थे उन्हें नहीं बचाया जा सका। हालांकि ऐसी भी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि इस हिमस्खलन ने कुछ भारतीय चौकियों को भी नुकसान पहुंचा है और जैसा कि आपको मालूम होगा कि सियाचिन को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में माना जाता है, जो कि कराकोरम रेंज में समुद्र तल से 20,000 फुट की ऊंचाई पर है और यहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी यानी कि MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें और उनके सहयोगियों को भारत में शरण देने की अपील की है और अपना मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक ले जाने के लिए आर्थिक मदद देने की अपील की है। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि उनके कई रिश्तेदार भारत में ही दफनाए गए हैं। अल्ताफ हुसैन इस समय लंदन में हैं और उन पर अपने भाषण से चरमपंथ को बढ़ावा देने का मामला चल रहा है। अल्ताफ हुसैन और इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारी सहयोगी कमलेश मठी ने बात की BBC के उर्दू संवाददाता रियाज सुहेल से।
अल्ता हुसैन कराची जो सिंध का कैपिटल है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उन्होंने 1978 से अपने पॉलिटिकल करियर का इब्तिदा की थी। उन दिनों में वो कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्टूडेंट तंजीम की बुनियाद रखी थी जिसका नाम था आल पाकिस्तान महाजिर एसोसिएशन। उसने आगे चलकर 1984 में MQM या महाजिर कौमी मूवमेंट का जो इब्तिदा की थी। और इस जो तंजीम की जो सियासत का बुनियाद ये था कि जो उर्दू आबादी है जिसे ये तंजीम महाजिर आबादी करार देती है, जो पार्टीशन के वक्त इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आई थी, उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। और खास तौर पर एम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में जो कोटा सिस्टम था उसमें उन्हें तालीमी इदारों में और मुलाजमतों में नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके हुकूक के लिए इस तंजीम का बुनियाद रखा गया था। उसके बाद जो भी इलेक्शन हुए 30 सालों तक MQM का कराची पर होल्ड रहा, मगर सिचुएशन कभी कभार संगीन भी होती गई क्योंकि MQM को कोई 3 मरतबा पाकिस्तान के रियासती ऑपरेशन का भी सामना करना पड़ा था। उसमें 1992 का ऑपरेशन शामिल है, उसमें 1996 का ऑपरेशन शामिल है, और 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उसका एक और ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया, जिसके नतीजे में MQM को शदीद जो तंजीमी और सियासी नुकसान का उठाना पड़ा।
अल्ताफ हुसैन को लेकर चल रहा मौजूदा मामला क्या है?
मौजूदा वक्त उन पर एक हेट स्पीच का मुकदमा जारी है। इस मुकदमे पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने एक नफरत अंगेज स्पीच की थी जिसकी कराची में जो है वो हंगामे हुए थे। मौजूदा वक्त इस मुकदमे में जमानत पर है और इस मुकदमे की बाज़ाब्ता जो हेरिंग है वो जून या जुलाई से शुरू होनी है।
उनका भारत से क्या संबंध है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री से इन्होंने मदद मांगी है और एक सारे जहां से अच्छा गीत गाते हुए इनका एक वीडियो भी आया था।
अल्ताफ हुसैन पर रियासत पाकिस्तान हमेशा ये इल्जाम आयद करती रही है कि वो इंडिया के एजेंडा पे काम करते हैं और उनके राह के साथ लिंक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में पुलिस ऑफिसर्स से लेकर जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ये मुख्तलिफ मराइल पर ये बातें भी करती रही हैं। जबकि अल्ताफ हुसैन जो गुज़िश्ता कई अरसे से लंदन में मुकीम है, उसको बार कई मरतबा इस किस्म की दरख्वास्तें करते रहे। इससे पहले जो 2015 में भी उन्होंने जो नेटो को, इंडिया को और अक़वामे मुत्तहिदा को अपील की थी कि वो कराची में जो है मुदाखलत करें, जो ऑपरेशन जारी है उसको रोके। उसके बाद 2017 में भी उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये अपील की थी कि वो जो कराची में ऑपरेशन जारी है उस पर वो आवाज उठाए। तो इस तरीके से वो बार बार इस किस्म के जो अपीलें करते रहे हैं। इंडिया की तरफ से कोई इस पर कोई मस्बत किस्म का कोई रवैया या इस किस्म का इजहार कभी भी सामने नहीं आया।
कराची से BBC उर्दू संवाददाता रियाज सुहेल बता रहे थे कि आखिरकार कौन है MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों भारत में शरण देने की अपील की है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और मोहम्मद शाहिद। अखबार के पन्ने पलट चुके हैं, पलट रहे हैं
जी,
तो अखबार क्या कह रहे हैं मोहम्मद शाहिद?
मोहनलाल जी, जो हॉस्टल की फीस बढ़ाने को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों का संसद मार्च था, वो आज लगभग हर अखबार की पहली सुर्खियों में शामिल है। हालांकि संसद तक आने वाले इस मार्च को जोरबाग में ही रोक लिया गया था। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार का शीर्षक है, पुलिस ने कहा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। जबकि बड़ी है दिलचस्पी है कि उसी पर उन्होंने एक छात्र के पीछे लाठी चलाते हुए एक पुलिसकर्मी की फोटो लगाई है। और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने फ्लाईओवर से उतरती छात्रों की बैनर लेते हुए एक विशाल भीड़ को दिखाया है। हाँ। और शीर्षक दिया है JNU मार्च में पुलिस छात्रों का आमना सामना। इसके साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स ने कई तस्वीरें छापी हैं। हाँ। जिनमें छात्रों के सिर से खून निकल रहा है या वो भागते हुए दिख रहे हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं। इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है कि संसद की ओर बढ़ रहे JNU छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा।
यहीं पर जब चर्चा JNU की हो रही है तो यहीं पर हम आपको बता दें कि bbchindi.com पर एक और छात्र संघर्ष की खबर है कि आखिरकार पिछले 1.5 महीने से उत्तराखंड में छात्र क्यों हैं सड़कों पर। आखिरकार उत्तराखंड के निजी कॉलेजों में ये आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे सैकड़ों छात्र धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। इस खबर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए bbchindi.com।
ये प्रदर्शन भी मोहनलाल जी फीस वृद्धि को ही लेकर है और तमाम अखबारों ने JNU वाली खबर को छापा है। उसके अलावा अगर रुख करें कुछ और खबरों का तो इसमें नवभारत टाइम्स में मैं देख सकता हूं कि दिल्ली में जो ऑड इवन लगता है उस पर अब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि अब ऑड इवन और नहीं होगा और विषम हालात जो है शीर्षक कह रहा है कि जो पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं हरियाणा पंजाब में, उससे हो सकता है और खराब हो। इसके अलावा सीवर कनेक्शन को लेके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है दिल्ली के लोगों के लिए कि वह मुफ्त सीवर कनेक्शन देंगे। और
बहुत सारी चीजें मुफ्त होती जा रही हैं दिल्ली
जी। और मोहनलाल जी, आपको पता ही है कि अब चुनाव आने वाले हैं, जनवरी में शायद हो जाए चुनाव दिल्ली में, उसको लेकर अभी एक हाल में जो रिपोर्ट आई थी पानी की गुणवत्ता को लेकर, उस पानी की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली में राजनीति बहुत तेजी से शुरू हो गई है। और हिंदुस्तान अखबार पर लिखा है, शीर्षक है, पानी पर रार, केजरीवाल ने दी नमूनों की खुली जांच की चुनौती।
हाँ, और दिल्ली समेत तमाम, कल ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि तमाम जो नमूने हैं, लखनऊ हो या फिर दिल्ली हो, ये सारे नमूने फेल हो चुके हैं, पानी की गुणवत्ता किस कदर खराब हो चुकी है। बड़ी खबर जिस पे हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, वो खबर है महाराष्ट्र की, कि आखिरकार महाराष्ट्र में किस दल की सरकार बनने जा रही है। दैनिक जागरण मेरे सामने है और दैनिक जागरण खबर लगाता है कि महाराष्ट्र में सस्पेंस गहराया, सोनिया और पवार की मुलाकात के बाद सरकार के गठन का पेच और उलझा। अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अभी भी जारी है और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब किस तरह से राजनीति बदलती जा रही है।
मोहनलाल जी, इसके अलावा जस्टिस एस ए बोबड़े, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कल शपथ ली है, वो खबर हर किसी के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहले शपथ फिर माँ का आशीर्वाद लिया, और वो तस्वीर लगी है, वो अपनी माँ के आशीर्वाद ले रहे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थी व्हीलचेयर पे। और इस तरीके से तमाम खबरें हैं। और नाम नवभारत टाइम्स ने कहा है कि इस मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में जमैका और भूटान के भी न्यायाधीश शामिल हुए थे।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद, विस्तार से अखबारों की समीक्षा करने के लिए। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है खेल की खबरें सुनने का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह, और आज सबसे पहले बात टेनिस की। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे स्टेफानोस सिटसिपास ने रविवार को अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। उन्होंने सिर्फ 21 साल 3 महीने की उम्र में ये खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही वो 18 साल में ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स के चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के लेटन हेविट के नाम था। ग्रीस के स्टेफानोस ने रविवार को लंदन में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को हराया। उन्होंने ये खिताब 6-7, 6-2, 7-6 से जीता। स्टेफानोस सिटसिपास फाइनल मुकाबले के दौरान दर्द से परेशान नजर आए। उनके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद खेल जारी रखा और चैंपियन भी बने। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। हरमीत देसाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार फॉर्म जारी रखते हुए इंडोनेशिया ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। वर्ल्ड नंबर 104 हरमीत ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में हमवतन एंथनी अमलराज को 4-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। मौजूदा कॉमनवेल्थ चैंपियन हरमीत का इस साल का ये दूसरा खिताब है। और अब जाने से पहले बात फुटबॉल की। अर्जेंटीना के लाइनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल में बैन के बाद शानदार वापसी की है। उन्होंने ब्राजील के खिलाफ खेले गए दोस्ताना मैच में वापसी की। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने बेहतरीन गोल कर इस मैच को यादगार बनाया। उनके गोल की बदौलत ही अर्जेंटीना ने ब्राजील के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की। खेल समाचारों में आज इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी ज्योतिका सिंह। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
BBC समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने घोषणा की है कि अमेरिका इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक को अब अवैध नहीं मानता है। वेस्ट बैंक में बसाई गई यहूदी बस्तियों को अमरीकी विदेश मंत्रालय 4 दशकों से अवैध मानता आया था। हांगकांग के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी कैंपस में गतिरोध अभी भी बना हुआ है। कुछ प्रसिद्ध हस्तियों ने कैंपस में जाकर प्रदर्शनकारियों को उस जगह को छोड़ने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ किए गए अपने परमाणु समझौते के तहत पानी जमा करने की सीमा को लांघ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का कहना है कि ईरान 130 टन पानी जमा करने की सीमा से आगे बढ़ गया है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक वॉलमार्ट स्टोर में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने पुष्टि की है इस घटना में हमलावर की भी मौत हुई है। लेबनान में प्रदर्शनों के आयोजनकर्ताओं ने मंगलवार को संसद सत्र में सांसदों को जाने से रोकने के लिए एक बैठक की है। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे रवि शंकर कुमार, अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे। कार्यक्रम का नाम आप जानते हैं, दिन भर। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।